समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं, ना कि मनोरथों से। ठीक उसी प्रकार जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आता, उसके लिए शेर को परिश्रम करना ही पड़ता है। इसीलिए इस अनमोल जीवन में अपने सपनों के लिए मेहनत करते रहें और अपने मनोरथों को सिद्ध करें। इन्हीं प्रेरणादायक पंक्तियों के साथ आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz पर समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम आज सवेरे के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज सप्ताह के इस अंतिम और ओजपूर्ण प्रभात में आपके साथ मैं हूं मुकेश कुमार बल और मेरे साथ हैं शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार मुकेश, गुड मॉर्निंग, गुड डे एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम एंड दिस वार्म दैट आई एम एडिंग, दिस इज बिकॉज विंटर हैज फाइनली अराइव्ड, वी कैन सी दैट। एंड व्हाट गुड इज द वार्मथ ऑफ समर विदाउट द कोल्ड ऑफ विंटर टू गिव इट दैट वेरी नेसेसरी स्वीटनेस। सो लेट अस लव विंटर, फॉर इट इज द स्प्रिंग ऑफ जीनियस। दैट्स व्हाट आई वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग, सो आई वांटेड टू शेयर इट विद आवर लिसनर्स। एंड लिसनर्स, वेरी वार्म वेलकम अगेन। We are here to present our daily news magazine program at Savere, and first we'll give you the latest national and international news. Also, we'll provide you Metro City updates, and there is a lot to talk about in the history section of our program. And at the end, we have our tributes to the personalities, the esteemed personalities, well, born, or they even left us, some of them.
तो सबसे पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर।
जी,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड राज्य के गठन की रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए देहरादून जाएंगे। श्री मोदी एक सभा को भी इस अवसर पर संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 8000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन परियोजनाओं में पेयजल, सिंचाई, तकनीकी शिक्षा, ऊर्जा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास सहित प्रमुख क्षेत्रों की योजनाएं शामिल हैं।
समारोह के दौरान प्रधानमंत्री एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। जिन परियोजनाओं का आज उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा वे पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, खेल और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं। प्रमुख परियोजनाओं में अमृत योजना के अंतर्गत देहरादून जलापूर्ति कवरेज, पिथौरागढ़ में विद्युत सब स्टेशन, सरकारी भवनों में सौर ऊर्जा संयंत्र और हल्द्वानी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी देहरादून की सौंग बांध पेयजल परियोजना और नैनीताल की जमरानी बहुउद्देशीय परियोजना का भी शिलान्यास करेंगे। सौंग बांध से देहरादून को प्रतिदिन 150 MLD पेयजल मिलेगा, जबकि जमरानी परियोजना से सिंचाई, पेयजल और बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अतिरिक्त चंपावत में महिला खेल महाविद्यालय, नैनीताल में अत्याधुनिक डेयरी संयंत्र और विभिन्न विद्युत सब स्टेशन परियोजनाओं की भी नींव रखी जाएगी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अफ्रीका की दो देशों की राजकीय यात्रा के पहले चरण में अंगोला पहुंच गई हैं। वे भारतीय समय अनुसार कल रात 11 बजे राजधानी लुआंडा पहुंची। ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की अंगोला की पहली राजकीय यात्रा है। दोनों देश इस वर्ष राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इस वर्ष दोनों देशों के बीच ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक है। इससे पहले मई में अंगोला के राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लुआंडा स्थित राष्ट्रपति भवन में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुअल गोंजाल्विस लोरेंको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसके बाद दोनों देश आपसी हितों के मुद्दों से जुड़े समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वार्ता में इस वर्ष मई में नई दिल्ली में हुई पिछली उच्च स्तरीय वार्ता में दोनों देशों के बीच चर्चा किए गए मुद्दों को आगे बढ़ाने की संभावना है।
साल की शुरुआत में जब अंगोला के राष्ट्रपति की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई, तब भारत ने अंगोला की रक्षा आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी ऋण सहायता को मंजूरी दी थी। दोनों देश अभी इस समझौते को अंतिम रूप देने पर चर्चा कर रहे हैं। इसके तहत अंगोला भारत से कुछ रक्षा उपकरण भी खरीद सकता है। अंगोला पहले से ही अफ्रीका से भारत को ऊर्जा देने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। वहां नए तेल क्षेत्र की खोज से भारत को रिफाइनरी और तेल की खोज में अंगोला की मदद करने के अवसर मिल सकते हैं। भारत अंगोला को कृषि तकनीक और उपकरणों के जरिए खाद्य सुरक्षा हासिल करने में भी मदद कर सकता है। इस दौरान दोनों देशों के बीच जिन अन्य क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हो सकती है उनमें स्वास्थ्य सेवा, अंतरिक्ष तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषय शामिल है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, अंगोला।
राष्ट्रपति मुर्मू मंगलवार तक अंगोला में रहेंगी, जहां वे अंगोला की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ समारोह में भाग लेंगी। वे अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी और अंगोला में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करेंगी। 11 से 13 नवंबर तक राष्ट्रपति मुर्मू अपनी यात्रा के दूसरे चरण में बोत्सवाना जाएंगी। वे बोत्सवाना के राष्ट्रपति डूमा बोको के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। इसमें व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा और लोगों के बीच संबंधों जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के नए रास्ते खोजे जाएंगे। बोत्सवाना ने प्रोजेक्ट चीता पर भारत के साथ सहयोग करने और बोत्सवाना से भारत में चीतों के संभावित स्थानांतरण के लिए अपनी तत्परता का भी संकेत दिया है।
Campaigning for the second and final phase of the Bihar Assembly elections will conclude this evening, and in this phase, polling will be held on 11th of November in 122 Assembly constituencies spread across 20 districts. In the final phase, more than 3.7 crore voters will decide the electoral fate of 1,302 candidates, including 136 women. On the last day of campaigning today, senior campaigners, star campaigners and top leaders from NDA, the Mahagathbandhan and other parties, they will address several public meetings and election rallies. Senior BJP leader and Union Home Minister Amit Shah will address public meetings in Sasaram and Arwal. BJP senior leader and Defence Minister Rajnath Singh will address two rallies in Aurangabad and Kemur. JDU President and Chief Minister Nitish Kumar will hold multiple election rallies in Aurangabad, Gaya and Kemur. Meanwhile, Uttar Pradesh Chief Minister and Senior BJP Leader Yogi Adityanath will participate in several public meetings in Araria, Supaul and Madhubani districts. From the Mahagathbandhan, Senior Congress Leader Rahul Gandhi will address public meetings in Purnia and Kishanganj. RJD leader Tejaswi Prasad Yadav will address 11 public meetings in Babua, Rohtas and Aurangabad. Jan Suraj Party founder Prashant Kishore, so star campaigners from BSP, AIMIM and other parties will also take part in intense election rallies, public meetings and roadshows on this final day of campaigning. India and New Zealand have completed the fourth round of negotiations on Free Trade Agreement or FTA. After 5 days of productive discussions, the Ministry of Commerce and Industry said that the talks focused on key areas such as trade in goods and services, economic cooperation and rules of origin. Both sides said the discussions were positive and showed their shared goal of building a strong, modern and balanced trade partnership. And in a statement, the Ministry said that Union Minister of Commerce and Industry Piyush Goyal and New Zealand's Trade Minister Todd McLay welcome the progress made so far. Now we are moving on and we are providing you the weather updates here, listeners, for you. Before the our weather update section, let me provide you here. India Meteorological Department forecasted that night temperatures, they are likely to dip by 2 to 5 degrees Celsius over northwest and adjoining central India for the next 5 to 6 days, and we can feel the effect. IMD has also predicted fall in minimum temperature by about 2 degrees Celsius, very likely over parts of Vidarbha and Chhattisgarh till Monday. Some parts of Rajasthan and Madhya Pradesh are expected to experience cold wave conditions till tomorrow.
बिल्कुल, जैसा कि सर्दियों ने दस्तक दे ही दी है और स्टूडियो में भी आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज जब हम सुबह ये कार्यक्रम करने के लिए घर से निकले तो कुछ हल्की हल्की ठंडक सी महसूस हुई, जिसे अगर हम बात करें तो फुनकी कहा जाता है, तो वो फुनकी का एहसास अब होने लगा है और तो ऐसे में आप सभी से गुजारिश की जाती है कि आप हल्के कपड़े जो गर्म हैं वो पहन के रखें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें।
एंड आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट ग्लव्स इन द मॉर्निंग, आई कुडंट, बट यस आई विल फाइंड इट आउट। आल्सो द वेदर एजेंसी प्रेडिक्टेड हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर केरला, माही, तमिलनाडु, पुदुचेरी एंड कराईकल टुडे। मीनवाइल द एयर क्वालिटी इन द दिल्ली एनसीआर रीजन कंटिन्यूज टू बी इन द वेरी पुअर कैटेगरी। अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द एक्यूआई ऑफ द रीजन वॉज रिकॉर्डेड एट 391 दिस मॉर्निंग। दिस हैपेंड एट 7 AM। Now let me provide you sports updates. Pankaj Advani began his IBSF World Snooker Championships campaign with a 4-1 win over Canada's Sahil Nair in Doha yesterday, barring a minor hiccup in the third frame of the best of seven frame Group H match. Pankaj Advani was largely untroubled. He got into his stride straight away, running up a quick 2-0 lead, and he next faces Malaysia's Thor Chuan Leong.
श्रोताओं, कार्यक्रम के अगले भाग में अब रुक करते हैं महानगरों की खबरों का। इस कड़ी में चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलुरु की खबरों का हाल जानते हैं पहले शगुन से।
यस मुकेश, आई एम बिगिनिंग विद चेन्नई। The Export Inspection Agency, in association with the Department of Fisheries and Fishermen Welfare, organized a hygiene awareness program for the fishermen community as part of the celebration of Swachhata Pakhwada 2025 at the Kasimedu Fishing Harbour in Chennai yesterday. This happened yesterday. More than 100 people actively took part in the harbour cleaning drive, promoting the spirit of Swachhata and collective responsibility towards a cleaner and safer fishery environment. Also, a Senegal national involved in a multi-state synthetic drug cartel operating across India was arrested at Tiruvallur. A special team caught him in Delhi following a week-long investigation that exposed an extensive network trafficking of methamphetamine and other narcotics across several states. He had multiple mobile phones also containing extensive data related to drug operations in many states. Now, listeners, we are heading to Bengaluru. Union Minister of State for Micro, Small and Medium Enterprises, Shobha Karandlaje, inaugurated the Sansad Khel Mahotsav in Bengaluru yesterday. The event is part of the National Fit India and Fit Yuva for Viksit Bharat campaign being organized in the parliamentary constituencies across the state. Speaking on this occasion, the Minister and Bengaluru North Constituency Member of Parliament, Shobha Karandlaje, said that the initiative is an effort to realize Prime Minister Narendra Modi's vision to inculcate a robust sporting culture at the grassroots level. She emphasized on the importance of physical fitness for all ages. I have some more update from Bengaluru. The 530th Kanakdas Jayanti was celebrated across Karnataka yesterday. The revered saint poet of the 16th century, Kanakdas, was a profound devotee of Lord Krishna, known for composing devotional songs with social messages. And in Mysuru, a colourful procession was organised after paying tributes to the revered saint of the Bhakti movement. Now, let's head straight to Hyderabad. In Telangana, major political parties, including the ruling Congress and opposition BRS and BJP, are making all-out efforts to win the Jubilee Hills Assembly constituency, where by-poll is due on 11th of this month. The campaign, which will conclude this evening, is witnessing a fierce contest, with all major parties leaving no stone unturned to win the seat. The by-election was necessitated following the sudden demise of sitting BRS MLA M. Gopinath. Chief Minister A. Revanth Reddy and almost all ministers in the state cabinet besides state Congress leaders have taken part in the campaigning for Congress candidate V. Naveen Yadav. And now it's over to you, Mukesh, for updates from Delhi, Mumbai, Kolkata.
सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के समाचारों की। तो दिल्ली पुलिस ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम JLN में आज होने वाले लाइव संगीत कार्यक्रम के चलते यातायात निर्देशिका जारी की है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक बड़ी संख्या में लोगों के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आने की उम्मीद है। कार्यक्रम में आने वाले दर्शकों के लिए प्रवेश पार्किंग गेट संख्या 13 और 14 से होगा। दर्शकों के वाहनों के लिए पार्किंग गेट संख्या 7 और 9 से और स्कोप कॉम्प्लेक्स MCD पार्किंग पर उपलब्ध होगी। यातायात पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि वे BP मार्ग, CGO कॉम्प्लेक्स रोड और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की ओर जाने वाली सड़कों से बचें। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने 15 नवंबर से विंटर एक्शन प्लान के अंतर्गत राजधानी में 250 नए अस्थायी शेल्टर होम तैयार करने का फैसला किया है। ये अस्थाई शेल्टर होम दिल्ली के 197 स्थाई शेल्टर होम्स के अलावा होंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शेल्टर ठंड के मौसम में हर जरूरतमंद को सुरक्षित आश्रय और गरिमा के साथ रहने की सुविधा सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी शेल्टर होम्स की 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि सुविधाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकें। इसके अलावा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सभी विमानों का परिचालन बहाल हो गया है। नई दिल्ली हवाई अड्डे के एक बयान में कहा गया है कि सभी उड़ानों का परिचालन सामान्य है। सभी यात्रियों को उड़ानों की ताजा जानकारी के लिए संबंधित एयरलाइंस के साथ संपर्क बनाने की सलाह दी गई है। और दिल्ली के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के 18वें ओपन हाउस कार्यक्रम में 220 से अधिक पोस्टर और लाइव शो कल डेमो में प्रदर्शित किए गए। इसमें विद्यार्थी, शिक्षक और उद्योग विशेषज्ञों सहित 3,500 आगंतुक शामिल हुए। और अब बात करते हैं मुंबई के समाचारों की। महाराष्ट्र सरकार ने अपने विभिन्न विभागों को नासिक त्र्यंबकेश्वर में सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 के लिए विस्तृत योजना बनाने का निर्देश दिया है। नासिक के संभागीय आयुक्त कार्यालय में एक समीक्षा बैठक में राज्य के मुख्य सचिव राजेश कुमार ने श्रद्धालुओं की सुविधा, पार्किंग क्षेत्रों से स्नान घाटों तक श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन और एप्स पोर्टल पर डिजिटल मीडिया के माध्यम से सूचनाएं देने की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अलावा बृहन मुंबई नगर निगम ने गोरेगांव में वीर सावरकर MTNL फ्लाईओवर को नहीं गिराने का भी फैसला किया है। पहले इसे वर्सोवा दहिसर कोस्टल रोड परियोजना में बाधा के रूप में चिन्हित किया गया था। इसके बजाय नए कोस्टल रोड पुल का निर्माण मोनोपाइल तकनीक का उपयोग करके किया जाएगा, जिससे इसे मौजूदा फ्लाईओवर को तोड़े बिना ही उसके ऊपर से गुजरने में सुविधा होगी। इसका डिजाइन जल्द ही तकनीकी मूल्यांकन के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सौंपा जाएगा। और महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के गोकुलदास तेजपाल GT सरकारी मेडिकल कॉलेज सहित राज्य के 11 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कार्डियक कैथेटराइजेशन कैथ लैब्स की स्थापना को मंजूरी दी है। इन नई लैब में एनेस्थेसिया वर्कस्टेशन, इको मशीन और ACT डिवाइस सहित उन्नत चिकित्सा उपकरण शामिल होंगे, जिससे जटिल हृदय संबंधी प्रक्रियाओं को सुचारू और कुशल तरीके से उपयोग किया जा सकेगा। ये परियोजना सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के तहत क्रियान्वित की जाएगी। और कल्याण, टिटवाला, शाहद और उसके आसपास के इलाकों में 11 नवंबर को 12 घंटे की पानी की कटौती रहेगी। कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने एक अधिसूचना में कहा कि कल्याण पश्चिम और पूर्व के साथ कुछ हिस्सों और इसके ग्रामीण संभाग के साथ साथ टिटवाला, अम्बिवली, वडावली, शाहद और अटाली में 11 नवंबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक पानी की कटौती लागू रहेगी। श्रोताओं, आज सवेरे में अब हाल है मौसम का हाल जानने का, तो सबसे पहले चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद के मौसम को सुनते हैं शगुन से।
यस मुकेश, चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई एंड देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मॉडरेट रेन। मिनिमम टेम्परेचर वाज 25 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 33 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव मिस्ड, द मिनिमम टेम्परेचर वाज 19 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्रीज। हैदराबाद अगेन एक्सपेक्टेड टू हैव अ पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज, the temperature, minimum temperature will be around 16 degrees Celsius and maximum temperature will be around 31 degrees Celsius.
इधर राजधानी दिल्ली में आज हल्की धुंध छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। उधर मुंबई में आज आसमान साफ रहने की संभावना है। शहर में आज का न्यूनतम तापमान 20 डिग्री और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अगर बात करें कोलकाता की, तो वहां भी आज मौसम साफ रहने का अनुमान है। शहर में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और अब बात करते हैं आज के इतिहास के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आज का दिन क्यों विशेष है।
जी,
तो श्रोताओं, आज राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस है। इस दिन का उद्देश्य कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करना और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना है। इस दिन की शुरुआत विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के पारित होने की याद में की गई है। यह अधिनियम आज ही के दिन वर्ष 1995 में लागू हुआ था।
Yes, National Legal Services Day commemorates the Legal Services Authorities Act 1987, which led to the establishment of organizations providing free legal aid to the needy, and India's legal aid system has reached 44.22 lakh people between 2020-25 and resolved 23.58 crore cases through Lok Adalats.
बिल्कुल, तो इस दिन पर देश भर में विभिन्न न्यायिक संस्थाएं जो हैं, वो न्याय सेवाओं से जुड़ी कई शिविरों का भी आज के दिन आयोजन कर रही हैं, जहां पर लोगों को उनके न्याय उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे।
yes.
और अब बात करते हैं आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो 1580 में स्पेन की सेना ने आयरलैंड पर आज ही के दिन हमला किया था।
Yes, in 1922, Albert Einstein was named the winner of the Nobel Prize for Physics for his explanation of the photoelectric effect.
1729 में ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन ने सेवाइल की संधि पर हस्ताक्षर किए। दो वर्षों से चल रहे एंग्लो स्पेन युद्ध का इस संधि के बाद समापन हुआ था। और 1794 में रूस की सेनाओं ने पोलैंड की राजधानी वारसा पर भी कब्जा किया था आज ही के दिन।
In 1947 as well, Indian government completed the process of integrating the princely state of Junagadh into India.
1953 में कंबोडिया को फ्रांस से आज ही के दिन आजादी मिली थी। और अगर बात करें उत्तराखंड की, तो 2000 सन में आज ही के दिन उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से एक अलग राज्य के रूप में गठित हुआ था। और ये भारत का 27वां राज्य के रूप में सामने आया। अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वैसे तो उत्तराखंड की मुख्य भाषा हिंदी है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर गढ़वाली और कुमाऊनी बोली बोली जाती है।
जी, एंड वी टॉक अबाउट उत्तराखंड, द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड इज द लोकल ट्रेडिशंस एंड एवरीथिंग, एंड इट इज अ हब ऑफ डिफरेंट ट्रेडिशंस व्हिच आर ब्रॉट टुगेदर, एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स आउट द ब्यूटी ऑफ द स्टेट, मुकेश, राइट?
बिल्कुल, यही भारत की एक तरीके से कह सकते हैं कि हम विशेषता है, कि विविधता में एकता और संस्कृति जो यहाँ पर एक निकल कर आती है, वो ही इस देश की सुंदरता को चिन्हित करती है। लेकिन अगर हम बात करें इसी कड़ी में उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का राष्ट्रीय चिन्ह तीन पर्वत वाली एक छोटी चोटी है, और उत्तराखंड का राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। उत्तराखंड का जो राजकीय पशु है वो कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग के बारे में हमारे धार्मिक साहित्य में कहा जाता है कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, जैसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। तो जैसे कस्तूरी का जो मृग होता है, उसके नाभि में ही वो एक खुशबू होती है जो उसके आसपास घूम रही होती है, लेकिन उसको ये पता नहीं होता कि वो खुशबू उसी के भीतर है। तो अगर हम इसी संदर्भ में उत्तराखंड की बात करें, तो ब्रह्म कमल और कस्तूरी मृग, जिसे आध्यात्मवाद में बहुत एक तरीके से महत्वपूर्ण माना गया है, तो दोनों ही चीजें उत्तराखंड में समाहित हैं, इसीलिए इसको देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, तो उत्तराखंड में कई प्रमुख मंदिर हैं, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, तुंगनाथ आदि शामिल हैं।
And listeners, you can plan a visit to the wondrous state, and we are sure that each one of you is likely to have an amazing time here, right?
बिल्कुल। श्रोताओं, अब बात उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। तो आज पुण्यतिथि है संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित और जानकार गंगानाथ झा की। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और मैथिली भाषा में ग्रंथों की रचना की। इनकी स्मृति में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का गंगानाथ झा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है। कतिपय यत दिवसो अदग्रोह प्रवोह बेला महात्म्यम भक्ति कल्लोलिनी भाव बोधिनी वैश्विक दर्पण न्याय प्रकाश कवि रहस्य उनकी मुख्य रचनाओं में शामिल हैं। इन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का अंग्रेजी में भी अनुवाद किया।
Listeners, today we're also remembering Carl Stig Erland Larsson, the writer, journalist, and also an activist, best known for writing the Millennium Trilogy of crime novels. They were published actually posthumously. I was telling you about Carl Stig Erlin Stig Larsson, and for much of his life he lived and worked in Stockholm, and his journalistic work covered socialist politics, and also he acted as an independent researcher.
श्रोताओं, आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध समाज सुधारक डॉक्टर ढोंडो केशव कर्वे की। उन्होंने महिला शिक्षा और विधवा विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ढोंडो केशव कर्वे के द्वारा मुंबई में स्थापित SNTD महिला विश्वविद्यालय भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय है। महर्षि कर्वे के नाम के साथ बड़े ही सम्मान और आदर के साथ याद किए जाने वाले ढोंडो केशव कर्वे को आधुनिक भारत के एक प्रमुख समाज सुधारक के रूप में याद किया जाता है। उन्हें भारत रत्न और पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया।
Listeners, today we're also remembering a musician. It's definitely important to celebrate music as well in this section. I am talking about Garrick Roberts. The musician is best known as the lead guitarist with the Boomtown Rats, a band which came into being in 1976. I have chosen a song because tomorrow it's Monday, so the song's name is I Don't Like Mondays. Let's listen in. This band, it had other singers as well. Singer Bob Geldof and Gary Gott on guitar and Simon Crow on drums, and they used to perform worldwide.
आज पुण्यतिथि है प्रसिद्ध जैव रसायन शास्त्री डॉक्टर हरगोविंद खुराना की। इन्हें 1968 में शरीर विज्ञान या चिकित्सा के क्षेत्र में मार्शल W. निरेनबर्ग और रॉबर्ट W. हॉली के साथ नोबेल पुरस्कार मिला। इस अनुसंधान से पता लगाने में सहायता मिली कि कोशिका के आनुवंशिक कोड को ले जाने वाले न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड्स कैसे कोशिका के प्रोटीन सिंथेसिस को नियंत्रित करते हैं। उन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा आज पुण्यतिथि है स्वाधीनता सेनानी और कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक रहे पूरन चंद जोशी की। वे PC जोशी के नाम से प्रसिद्ध थे। पूरन चंद जोशी को सन 1929 में मेरठ षड्यंत्र में सजा भी हुई थी।
Listeners, today we're also remembering Tom Fogerty, Thomas Richard Fogerty, the musician best known as the rhythm guitarist for Creedence Clearwater Revival, and he was posthumously inducted into the Rock and Roll Hall of Fame in 1993. Let's listen to one of his creations.
श्रोताओं, आज जयंती है कवि सुदामा पांडेय धूमिल की। उनकी कविताओं में आजादी के सपनों के मोहभंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे गहन अभिव्यक्ति मिलती है। व्यवस्था जिसने जनता को छला है उसको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य रहा। इन्हें मरणोपरांत 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझको, धूमिल की कविताएं, किस्सा जनतंत्र और मोचीराम उनकी प्रमुख रचनाओं में शुमार है। आज उनकी जयंती पर पेश है उनकी ये कविता। शब्द किस तरह कविता बनते हैं इसे देखो, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना कि लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। ये थे धूमिल।
Listeners, after that very beautiful creation that you were reciting, we are also remembering Mary Allen Travers, a singer, found fame as a member of 1960s folk trio Peter, Paul and Mary. And this song, which you must be hearing in the background, this all three singers, Paul, Mary and Peter, they are performing this, and this is actually a live performance. So let's listen in.
श्रोताओं, आज जयंती है एक और जाने माने कवि, लेखक, भाषाविद, संविधान विशेषज्ञ और प्रसिद्ध न्यायविद लक्ष्मीमल सिंघवी की। उन्होंने हिंदी भाषा के उत्थान के लिए सराहनीय कार्य किए।
And listeners, let's also tell you about Alice Mary Coachman Davis, the athlete. She specialized in high jump and was the first black woman to win an Olympic gold medal. And she was unable to access athletic training, but she trained very hard and then she was able to receive this gold medal by her absolute hard work.
तो श्रोताओं, कार्यक्रम के समापन में आज का सुविचार की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, तो निरंतर मेहनत करते रहें और सफलता को अपने पास ले आएं।
एंड वी ऑल्सो थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन एंड वी होप यू हैव अ वंडरफुल डे अहेड।
नमस्कार।